Good morning, student. In this section, we'll talk about synthesis of triglycerol. So, what is triglycerol? Triglycerols kya hai? Ispe one molecule glycerol ka hota hai aur isme three fatty acids ke molecule attach hote hain. To hume pata honi chahiye ki triglycerol ki formations kis jagah par hoti, kis side mein hoti hai aur iski kya आवश्यकता है, क्या नीड है इनकी. एनर्जी ट्राइग्लिसरॉल की फॉर्म में स्टोर रहती है. किस कंडीशंस में? जब एक्सेस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जब डाइट में लेते हैं तो ट्राइग्लिसरॉल की फॉर्मेशन होती है और ये स्टोर रहती है ट्राइग्लिसरॉल के फॉर्म में, कहाँ? फैट उस एडिपोज टिश्यू एंड लिवर में. फैटी एसिड की सिंथेसिस में जब बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में एनर्जी होती है तो फैटी एसिड के फॉर्म में स्टोर हो जाती है. साइड ऑफ सिंथेसिस, किस साइड्स में इसकी सिंथेसिस होती है? लिवर की हेपेटोसाइट सेल्स में एंड एडिपोज टिश्यूज में. और किस कंडीशंस में इनकी होती है सिंथेसिस? जब डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो ज्यादा एनर्जी बनती है, लेकिन बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी बनेगी तो ये स्टोर हो जाती है एडिपोज टिश्यूज में एंड लिवर में. और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट जब ज्यादा होता है तो ये ब्लड में ग्लिसरॉल से कहाँ, ये कहाँ पहुंचती है ग्लूकोज से? लिवर में. तो लिवर में जाकर के इसकी ग्लाइकोलाइसिस होती है. लिवर में जब ग्लाइकोलाइसिस होगी तो क्या बनेगा? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. हमने एक पढ़ा है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज से क्या बनता है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में. फिर इसका क्या होता है? रिडक्शन होता है. रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं हमारे? एनएडीएच, एनएडी, एनएडीएच, एनएडी. इसका एनएडीएच का रिडक्शन हो जाए, एनएडी बनेगा. कौन से इंजाइम के द्वारा? ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट डीहाइड्रोजनीज इंजाइम्स के द्वारा. तो हमारा वन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट बनता है. ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट बनेगा और ये हमारे फैटी एसिड्स के वन मॉलिक्यूल से जाकर के अटैच होगा. इसी से हमारा फैटी एसिड्स का वन मॉलिक्यूल अटैच होगा ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट से. और ग्लिसरॉल ब्लड के अंदर क्या हुआ? ग्लूकोज कहाँ पहुंचा? लिवर में. और लिवर से अपटेक हुआ तो फिर क्या हुआ इसका? एटीपी से एडीपी. ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के बाद में इसका क्या हुआ? एटीपी से एडीपी की फॉर्मेशन हुई और ग्लिसरोकाइनेज एंजाइम के द्वारा इसका फास्फोराइलेशन होगा. फास्फोराइलेशन होगा तो ये कार्बन नंबर थर्ड पर फॉस्फेट अटैच करेगा. जब फास्फोराइलेशन की प्रोसेस किस एंजाइम्स के द्वारा हुई? ग्लिसरॉल काइनेज एंजाइम्स के द्वारा. सबसे पहले क्या हुआ? ब्लड में ग्लूकोज ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ लिवर के द्वारा और फिर वो उसकी ग्लाइकोलाइसिस हुई तो हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना. फिर वो रिड्यूस हुआ ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट डी हाइड्रोजिनेस एंजाइम्स के द्वारा और फिर क्या बना? ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट. ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट बना, फिर उससे क्या हुआ? ग्लिसरोकाइनेज एंजाइम के द्वारा इसका फास्फोराइलेशन हुआ और यह ग्लिसरॉल के कार्बन नंबर थर्ड पर जाकर के फॉस्फेट अटैच करता है. फास्फोराइलेशन में क्या होता है? फॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है. फॉस्फेट अटैच करने के लिए हमें ग्लिसरॉल काइनेज एंजाइम के द्वारा ये फास्फोराइलेशन होगी और ये कार्बन नंबर थर्ड पर फॉस्फेट अटैच करेगा. ग्लिसरॉल के कार्बन नंबर थर्ड पर यह फॉस्फेट को अटैच करेगा. सेम यही प्रोसेस हमारी एडिपोज टिश्यूज में होती है. एडिपोज टिश्यूज में भी ग्लूकोज कहां पर आया? एडिपोज टिश्यूज में, वहां पर भी इसकी ग्लाइकोलाइसिस हुई और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना और फिर उसका रिडक्शन हुआ तो ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट बना. और किसके द्वारा? ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेस एंजाइम के द्वारा. लेकिन एडिपोज टिश्यूज में इसकी फास्फोराइलेशन नहीं होती है. क्योंकि यहाँ पे ग्लिसरोकाइनेस एंजाइम एब्सेंट होता है, इसलिए यहाँ पे फास्फोराइलेशन नहीं होती, यानी कि ग्लिसरॉल के कार्बन नंबर थर्ड पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं होता है। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पर लिवर में भी ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बन गया है और एडिपोल्स में भी ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बन जाते हैं। लेकिन अब इसमें बस ये दोनों में ये डिफरेंस है कि जो एडिपोस टिश्यूज है वहां पर फास्फोराइलेशन नहीं होती है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट की, और वो जाकर के कार्बन नंबर थर्ड से ग्लिसरॉल में अटैच नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ग्लिसरोकाइनेस एंजाइम्स नहीं होता है, और लिवर में ग्लिसरोकाइनेस एंजाइम पाया जाता है जिससे वो फास्फोराइलेशन कराता है। फास्फोराइलेशन कराने पर कार्बन नंबर थर्ड पर जाकर के फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, अब हमें क्या करना है, फैटी एसिड ग्रुप को ग्लिसरॉल से अटैच कराना है। तो फैटी एसिड हमारा इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, उसको एक्टिवेट कराना है, उसको वो जब एक्टिवेट होगा तभी वो काम करेगा, तभी वो ग्लिसरॉल से जाकर के अटैच होगा। तो पहले क्या करते हैं, हम फैटी एसिड को एक्टिव फॉर्म में चेंज करते हैं। फैटी एसिड को एक्टिव फॉर्म में चेंज करने के लिए फैटी एसाइल को सिंथेटेस इंजाइम्स की आवश्यकता होती है। तो फैटी एसिड को ए सिंथेटेस इंजाइम्स फैटी एसिड को फैटी एसाइल को ए में चेंज कर देता है, यानी कि फैटी एसिड में को ए ग्रुप जुड़ जाता है और वो फैटी एसाइल को ए में चेंज हो जाता है। अब फैटी एसाइल को ए जब ग्लिसरॉल से अटैच होगा, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से अटैच होगा, तो वो किसके थ्रू, किस एंजाइम के द्वारा, एसाइल ट्रांसफरेस एंजाइम के द्वारा। एसाइल ट्रांसफरेस एंजाइम फैटी एसिड के बन मॉलिक्यूल को ग्लिसरॉल के कार्बन नंबर फर्स्ट पर अटैच करता है और सीओ यानी कि को रिमूव हो जाता है, इससे केवल फैटी एसाइल ही अटैच होगा और को ए रिमूव हो जाता है। केवल वो किसकी प्रेजेंस में, एसाइल ट्रांसफरेस एंजाइम की प्रेजेंस में ये फैटी एसिड्स का वन मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के कार्बन नंबर फर्स्ट पर अटैच हो जाता है और कोए रिमूव हो जाता है, रिजल्टिंग जो प्रोजेक्ट जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो है लाइसोफॉस्फेटिक एसिड। लाइसोफॉस्फेटिक एसिड एसाइल ट्रांसफरेस एंजाइम्स के द्वारा फैटी एसिड को अटैच कराएगा। ठीक है, अब जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो क्या बना, लाइसोफॉस्फेटिक एसिड ये बना। अब ये क्या होगा, अब यही एसाइल ट्रांसफरेस एंजाइम के द्वारा फैटी एसिड को अटैच कराएगा, तो अब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, फॉस्फेटिक एसिड। सेकंड कार्बन से अटैच होगा तो क्या होगा, फॉस्फेटिक एसिड बन जाएगा। अभी हमारे स्टेप नंबर 1 पे क्या जुड़ा है, स्टेप जब हमारे ग्लिसरॉल के कार्बन नंबर फर्स्ट पर फैटी एसिड ग्रुप जुड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइसोफॉस्फेटिक एसिड। जब ग्लिसरॉल के सेकंड नंबर कार्बन पर फैटी एसिड ग्रुप जुड़ता है तो हम उसे कहते हैं फॉस्फेटिक एसिड, फॉस्फेटिक एसिड। और ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर जो बनता है, मतलब ग्लिसरॉल से 2 फैटी एसिड ग्रुप जुड़ जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, डाई फॉस्फो राइले। अब क्या होगा, ये फॉस्फेटिक एसिड भी बन गया, अब क्या होगा, हमारे कार्बन नंबर थर्ड से जुड़ा है फॉस्फेट। अब कार्बन नंबर जब थर्ड से जो फॉस्फेट जुड़ा है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा, तब जाकर के उससे फैटी एसिड ग्रुप अटैच होगा। तो फॉस्फेट को रिमूव करने के लिए एंजाइम फॉस्फेटेस एंजाइम इसको रिमूव करेगा। तो फॉस्फेटेस एंजाइम्स के द्वारा यहाँ का फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा आके, इससे भी फैटी एसिड ग्रुप जुड़ जाएगा। वैसे ही एसाइल ट्रांसफरेस एंजाइम के द्वारा एक और फैटी एसिड आकर के कार्बन नंबर थर्ड से जुड़ जाता है। तो अब हमारा ये पूरा कंप्लीट जो स्ट्रक्चर बनता है वो है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बनेगा। और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कहाँ होगा? लिवर के अंदर और एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब ये जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है ये लिवर और टिश्यू के अंदर अटैच होगा, और ये किससे मिलेगा? जाके लिपिड एपोलिपो प्रोटीन्स, लिपिड्स और एपोलिपो प्रोटीन से जाकर के जुड़ करके ये क्या बनाएगा? VLDL, वेरी लो डेस्ट्रिटिक लिपिड्स, वेरी लो डेस्ट्रिटिक लिपिड्स बनाएगा। और ये कहाँ पहुंच एंटर होगा? ब्लड में जाकर के एंटर होगा। जब ये ब्लड में जाकर के एंटर होगा और ये इंटेस्टाइन के द्वारा जब ये एब्जॉर्ब किया जाएगा, TAG यानी कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल इंटेस्टाइन के थ्रू जब एब्जॉर्ब किया जाता है तो ये पैक्ड हो जाता है क्लोमाइक्रॉन्स में, काइलोमाइक्रॉन्स में, ब्लड में जाकर के ये काइलो ये इंटेस्टाइन के थ्रू तो TAG को एब्जॉर्ब करते हैं और ये पैक्ड हो जाता है काइलोमाइक्रॉन में जाकर के। तो ये काइलोमाइक्रॉन कहाँ पे? ब्लड में है, ब्लड में आ जाते हैं। अब ये ब्लड में VLDL यानी कि वेरी लो डेस्ट्रिटिक लिपिड्स एंड काइलोमाइक्रॉन ये दोनों मिलकर के ब्लड में आ जाएंगे और डाइफिनाइल टिश्यूज में के द्वारा ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एक बार और इसको देख लेते हैं, जनरल ट्राइसाइल ग्लिसरॉल क्या होते हैं, इसका क्या स्ट्रक्चर है? इसमें वन मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का होता है और इससे तीन फैटी एसिड ग्रुप जुड़े रहते हैं। जब तीन फैटी एसिड ग्रुप और ये इनकी सिंथेसिस कहाँ पर होती है ट्राइसाइल ग्लिसरॉल की? कहाँ पे सिंथेसिस होगी इनकी? एडिपोज टिश्यूज में और लिवर में। और इनकी किस कंडीशंस में सिंथेसिस होती है? जब है ना बॉडी में डाइट में, जब जब डाइट में हम एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को लेते हैं, जब बॉडी को एनर्जी से ज्यादा एनर्जी मिलती है तो ये स्टोर हो जाता है ट्राई ग्लिसरॉल के फॉर्म में एडिपोज टिश्यूज में एंड लिवर में। और जब जब इनकी कंसंट्रेशन ग्लिसरॉल की ब्लड में ज्यादा हो जाती है तो ये जाकर के लिवर में पहुंचता है और वहां पर जाकर के ग्लाइकोलाइसिस होती है। जब ग्लाइकोलाइसिस होगी तो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में चेंज हो जाएंगे और वहां पर इसका रिडक्शन होगा रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा, एनएडी एनएडीएच के द्वारा ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और इसमें एंजाइम काम करेगा ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, जो कि DHAP यानी कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में चेंज कर देगा। ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट मॉलिक्यूल में ये चेंज होगा तो इसका वन मॉलिक्यूल फैटी एसिड से जाकर के अटैच हो जाएगा, फैटी एसिड में जाकर अटैच होगा। तो ब्लड के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस हुई उससे बना हमारा ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट। सेम यही प्रोसेस हमारी एडिपोज टिश्यूज में भी होती है, वहां पर भी ये ब्लड से एडिपोज टिश्यूज में गए और ये ग्लिसरॉल, और वहां पे भी इसकी ग्लाइकोलाइसिस हुई और सेम ये प्रोसेस इसी तरह से इसमें भी ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट बनेगा। लेकिन यहाँ पर केवल एक अंतर रहेगा कि यहाँ पर हमारा ग्लिसरोकाइनेज एंजाइम एब्सेंट होता है जो कि फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस नहीं करवाता है इसमें, क्योंकि ग्लिसरोकाइनेज एंजाइम्स के द्वारा फॉस्फोराइलेशन होता है जो एडिपोज टिश्यूज में नहीं होता है, केवल ये लिवर में ही पाया जाता है ग्लिसरोकाइनेज एंजाइम जो कि फास्फोराइलेशन कराता है यानी कि फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कराता है ग्लिसरॉल से। तो कार्बन नंबर 3 पर जाकर के फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है जब, और ये इसके फॉस्फेट नंबर 3 पर, ये कार्बन नंबर 3 पर जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है और इसके फिर इसके क्या होगा? तो अब ये अब इसको फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल के साथ भी अटैच होना है लेकिन ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स को। तो कैसे होगा कि हमारा जो फैटी एसिड है वह पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहता है और फैटी एसिड फैटी एसाइल को ए सिंथेटिक एंजाइम के द्वारा पहले वो एक्टिवेट होता है तो फैटी एसाइल को ए बनता है और को ए ग्रुप रिमूव हो जाता है एसाइल ट्रांसफरेस के थ्रू। ये फैटी एसिड के वन मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के कार्बन नंबर 1 से जाकर के अटैच हो जाता है और ये हमारा रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा लाइसोफॉस्फेटाइडिक एसिड बनेगा। फिर और फिर ये दोबारा एसाइल ट्रांसफरेज के द्वारा ये फैटी एसिड्स को अटैच कराएगा, फिर हमारा सेकेंड जो प्रोडक्ट बनेगा फॉस्फेटिडिक एसिड बनेगा। इसके बन बन मॉलिक्यूल्स अटैच होते जाएंगे ग्लिसरॉल के कार्बन नंबर फर्स्ट से हमारा अटैच हुआ तो क्या बना, लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड। कार्बन नंबर सेकेंड से अटैच होगा फैटी एसिड ग्लिसरॉल के तो उसको हम बोलेंगे फॉस्फेटिडिक एसिड। देन कार्बन नंबर थर्ड पर हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, लेकिन हमें उसको रिमूव कराना है तभी उसमें फैटी एसिड ग्रुप अटैच होगा। तो उसको रिमूव कराने के लिए फॉस्फेटेस एंजाइम की आवश्यकता होगी, तो फॉस्फेटेट एंजाइम उसको रिमूव कराता है फॉस्फेट को। तो वहां से जब वो रिमूव होगा तो उसमें फिर से फैटी एसाइल को सिंथेटिस एंजाइम के द्वारा फिर से ये एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इसको फैटी एसिड को फॉस्फेट वाली जगह पर उसको अटैच कराएगा, क्योंकि फॉस्फेट तो रिमूव हो गया फॉस्फेटेस एंजाइम के थ्रू। तो अब वहां पर थर्ड कार्बन पे भी जाकर के फैटी एसिड अटैच हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बन जाएगा और ये जाकर के स्टोर होते हैं लिवर में और एडिपोज टिश्यूज में। थैंक यू।